वृंदावन धाम के, द्वारका धाम के, मथुरा धाम के, मायापुर नवद्वीप धाम के, आनंद कोटि वैष्णव वृंद के, श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरंग नेताय गौर प्रेमानंदे। आवाज ठीक है कि बढ़ाना पड़ेगा? चलेगा? आवाज ठीक है ना? प्रारंभिक सूचना है, आप लोग आपस में कुछ बात नहीं करेंगे जब तक प्रवचन हमारा चालू रहेगा, तो आप ध्यान से सुनोगे। दूसरी सूचना है, अगर आपका मोबाइल है मोबाइल को साइलेंट में डाल दीजिए, साइलेंट साइलेंट या स्विच ऑफ, दोनों में से एक, क्योंकि आप बात करना बंद करोगे फिर मोबाइल चालू कर देगा अपना बात करना, है ना? स्कूल में जाते हैं तो टीचर पहले बताते बच्चे लोग शांत रहो, है ना? फिर तीसरी सूचना है, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो अपने पास लेकर बैठिए, छोटे बच्चे प्रवचन के समय प्रांगण में इधर उधर चक्कर नहीं काटना है, शांति से बैठे रहे, ठीक है? और समय समय पर सूचना दी जाएगी और आप लोग इसका पालन करिए, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत। श्रीमद् भागवत के तो यथा अनुरूप अध्याय है 11वां और इसका शीर्षक है विराट रूप और श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यं आध्यात्मा सज्ञतां यता त्वया उक्ता वचा तेन मोहं अयं विगता मम। मद अनुग्रहाय परमं गुह्यं आध्यात्म सज्ञितं यत्वोक्तं वचस्तेनं मोहोयं विगतो मम। अर्जुन उवाच, मद अनुग्रहाय परमं गोयम् आध्यात्म सज्ञितं यतोक्तं वचस्तेनं मोहोयं विगतो मम। अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं गोयम् आध्यात्म सज्ञितं यतोक्तं वचस्तेनं मोहोयं विगतो मम। अर्जुन उवाच, मद अनुग्रहाय परमं गोयम आध्यात्म सज्ञितं यतोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। नेक्स्ट अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा मद अनुग्रहाय मुझ पर कृपा करने के लिए परमम परम गोह्यम गोपनीयम अध्यात्म आध्यात्मिक संगीतम नाम से जाने वाला विषयक यत जो त्वया आपके द्वारा उक्तम कहे गए वचः शब्द तेन उससे मोह मोह आयम यह विगत हट गया माम मेरा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद के। अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गुप्त गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश किया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तात्पर्य इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु को भी कारण स्वरूप है जैसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहां तक अर्जुन की बात है उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अबे तो उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाए। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु है कि ये स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन उसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। कितना साफ सुथरा तात्पर्य है ना, आसानी से समझ में आता है कि नहीं? भाषा कितनी सरल है, छोटा बच्चा भी इसे समझ सकता है कि नहीं? ओम अज्ञान्ति मिरंधश्च ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मृतमेनम तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सहगणं रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपदानं सहगणं ललितांशं विशाखान्वितांशं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मन देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवके परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेवं त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेवं त्वमेव विद्यांश द्रविं त्वमेवं त्वमेव सर्वं मम देव देवं। ईश्वर परम कृष्णं सचिदानंद विग्रहं अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। जलमांध्यस्य यतोन्मयादि तरतश्चारथे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मदायादिक वये मुह्यन्त्यत सूरया। तेजोभारी मृदम यथा विनिमयो यत्र दिशगं वृषां दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। सेतुदर्पणमार्जनं भवमहादवाग्निनिर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावतु जीवनम् आनन्दमम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पुरनामृतस्वादनम् सर्वात्मस्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकेतम। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत् कृपां तमहं वंदे परमानंद माधवम्। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरि 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 स्मरण करो, हरे चरण अरविंद उरधरो, गंगा जमुना सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे, सुर सब तीर्थ को पाता वहा, हरि कथा होवे जहां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय द्वैत गदाधर शिवासरे गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अबे कितने लोग यहाँ पहले बार आए हमारा प्रवचन में, हाथ ऊपर करे खाली, फर्स्ट टाइम, तो इन सब का हरि बोल करके स्वागत करेंगे। बोले हरि बोल, ठीक है। तो भगवद गीता जो है भगवान श्री कृष्ण का वाणी है। दो प्रकार का साहस्य होता है, एक वपु के द्वारा और एक वाणी के द्वारा। जैसे गुरु जी जब रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं कि जब पढ़ाते हैं उसके बाद होमवर्क देते हैं कि देखो आज ये पढ़ा दिया है, कल के लिए ये होमवर्क करके आना, क्या समझा है नहीं समझा है पूछने का। जब मैं स्कूल पढ़ता था तो मेरे जो टीचर थे वो पूछते थे आपके समझ में आया, हमेशा पूछते थे, मैं बोलता हाँ गुरु जी समझ में आया, तब वो आगे बढ़ते थे। नहीं तो अगर ऐसा हो कि बहुत बोलने पर जब समझ में कुछ ना आए उसका फायदा नहीं है, प्रवचन बहुत अच्छा था लेकिन क्या था कुछ समझ में नहीं आया, है ना। जो समझ में नहीं आया उसका कुछ लाभ हो नहीं सकता है, जो समझ में आया है ना उसी का लाभ होगा। स्कूल में 12 महीने बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं और जब परीक्षा का समय आता है जो खेलकूद में समय नष्ट कर दिया है पूरा, इसको एक भोपला मिलता है, क्या मिलता है भोपला राउंड अप। और जो अच्छा पढ़ाई किया है ना उसको अच्छे मार्क मिलते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार से हम जहां भी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो एकाग्र चित्त से हमें सुनना है। विद्यार्थी के पास लक्षण है, क्या लक्षण है, एक लक्षण है स्वान निद्रा बको ध्यानम। स्वान निद्रा उसका नींद जो है ना एक चुटके में खुल जाएगा सब चिटाक से। स्वान निद्रा बको ध्यानम, बगुला क्या करता है ध्यान करता है, पानी में एक पैर पे खड़ा होता है और बहुत एकाग्र चित्त से ध्यान करता है। लेकिन ये ध्यान किस लिए होता है, वो ध्यान इसलिए होता है वो दिखाना चाहता है मैं बड़ा साधु हूं और मछलियां भोले भाले उनको प्रणाम करने आती है, जैसे ही पास में आते हैं और घट करके उसको खा जाता है ना। जो ढोंगे साधु है इनसे हमें बचना है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग साधु का वेशभूषा पहनकर सामान्य जनता को दिशा भूल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दिशा भूल, उन्हें भगवान का ज्ञान है नहीं। अब ज्ञान है नहीं है तो जिनके पास ज्ञान है उनके पास जाके ज्ञान प्राप्त करो। क्या पद्धति है ज्ञान प्राप्त करने की, तद्विधि प्रणिपातेन परि प्रश्न न सेवया उपजग सिद्धते ज्ञानम जायनाश तत्व दर्शिनः। भगवान बताते तद विधि, वो पद्धति कैसा है? प्रणिपात है ना, साष्टांग दंडवत प्रणिपात करना है, साष्टांग प्रणाम करना गुरुजी के चरणों में, है हेलो नहीं चलता है, क्या करना पड़ेगा? दंडवत प्रणाम। तद विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवया, और कोई समझ में नहीं आए तो वो प्रश्न हम गुरुजी को विनम्रता से पूछ सकते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानिनास तत्व दर्शिनः, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वान निद्रा बको ध्यानम, और काक स्नानम, जो काक स्नान कौवे जो स्नान करते हैं फटाफट, बहुत टाइम नहीं लगाते हैं। मित भोजी, भोजन करते हैं कैसा करते हैं? मित भोजी, जितना आवश्यकता है उतना ही भोजन करते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो खाते रहते, जब तक मटकी टूम हुए नहीं, कोई मिठाई किसको देंगे नहीं, सब लेके रखेंगे अपने पास। अब जैसे इसका संतुष्टि हो गई, फिर पिताजी को बोलेंगे लो, माताजी को बोलेंगे लो, बड़े भाई को बहन को सबको बांटना शुरू कर देंगे। जब तक उनका पूरा नहीं हुआ कोटा, किसी को कुछ देंगे नहीं। उनका कार्य क्या होता है? बच्चे खाते और सोते, और कोई झंझट नहीं की। बच्चे का जो नींद है बहुत अच्छा नींद रहता है। आप मंदिर लेकर आओ, स्कूल लेके जाओ, किधर भी, वो माँ के कंधे पर, पिता के कंधे पर, गोद में आराम से सोते रहते हैं। उनको कुछ पड़ी नहीं है, कैसे रहते हैं? निश्चिंत। अच्छा नींद आना जो है स्वास्थ्य का लक्षण है, स्वास्थ्य का लक्षण है। जो चोर गुंडा होता है ना, उनको नींद नहीं आती है, उनको नींद नहीं आती है। अब नींद क्यों नहीं आती है भाई? नींद इसलिए नहीं आती है, उनको डर पैदा रहता है कि उनको पकड़कर कोई जेल में बंद न करे। जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनको पता रहता है कि हम लोग पानी में है, जानते हैं ना अभी। लेकिन जब तक पुलिस उनको सहायता नहीं करेगी, तब तक चोर चोरी नहीं कर सकता है, यह 100% है। क्योंकि मछली जो है जाल के बाहर जाएगा, तालाब के बाहर किधर जाएगा? तालाब में तो रहेगी ना। तो इसी प्रकार से जो चोर भी होते हैं, बिना किसी का सपोर्ट चोरी नहीं कर सकते। आपने देश में जो लोग आतंकवादी आए, ये आतंकवादी को स्थानीय लोगों ने मदद किया, क्या कर दिया? अपने यहां के लोगों ने उनको मदद किया, इसलिए उन्होंने अपने देश पर, क्या ताज होटल था और किधर किधर उन्होंने अटैक किया है ना। बाहर से आया हुआ व्यक्ति कुछ भी कर नहीं सकता है। जब लकड़ी काटते हैं ना, कुल्हाड़ी से कटती हो, कैसे कटती है? कुल्हाड़ी से कटने के लिए वो केवल लोहे से नहीं कटती है, वो कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी होता है, लकड़ी पकड़ने का। जब तक लकड़ी काटने में सपोर्ट नहीं करेगी, वो काटा नहीं जाएगा। तो जो हार होते हैं ना, दूसरों से नहीं होती है, अपने से होती है। तो पहले अपने आप को क्या करना है? सुधारना है। अगला दर्शन जो है वो 8:30 होगा। जय श्री श्री गौरनता की जय, श्री श्री राधा रस विहारी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। अगला जो दर्शन है वो होगा 8:30। हाँ, तो जैसे जो कौवा है वो उसका रंग भी काला रहता है, और जो कोयल है उनका रंग भी काला रहता है, लेकिन जब वसंत ऋतु आते हैं तो कौवा काव काव करते रहता है। जैसे काव काव करता है हम लोग समझ जाते हैं कौवा है ये। कोयल जो है वो मीठे आवाज में गाती है, क्या करती है, गाती है, उसके आवाज में मिठास है, तो तब उसकी परीक्षा होती है, क्या होती है, परीक्षा होती है। तो वैसे जो बगला जो है वो दिखाता है बड़ा साधु बन गया है, लेकिन उसके कार्य से मालूम पड़ता है वो साधु है ही नहीं। कैसे मालूम पड़ता है, वो मछली को खा जाता है। अभी अगर मछली को खा जाएगा तो साधु का लक्षण नहीं है। साधु क्या है, तितिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधव साधु भूषणम। तितिक्षव जो सहनशील है, कैसे है, सहनशील। कारुणिका जो करुणाशील है। तितिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम जो सबके शुभ चिंतक है। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं है। शांत वहा जो शांत है। साधव जो शास्त्र के नियमों का आचरण करते हैं। साधु भूषणम यह साधु के क्या है, आभूषण है। और जो जिसके अंदर एक गुण नहीं है वो साधु नहीं है। केवल ड्रेस पहनने से कोई साधु नहीं हो सकता है, उसका हृदय में परिवर्तन की आवश्यकता है। धर्म क्या है, धार्यते इति धर्मः, वस्तु का वह गुण जो उसे अलग नहीं कर सकते। पानी का क्या धर्म है, ऊपर से नीचे बहता है, ऊपर से नीचे बहता है और ठंडा रहता है। कैसा रहता है पानी, ठंडा। तो ये पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। अग्नि का क्या स्वभाव है, जलाती है और प्रकाश देती है। अग्नि जो है पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा है, बाद में भी ऐसा रहेगा। तथापि जो बाकी जो है, कोई बोलते हैं हम हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बौद्ध है, यह विश्वास मात्र है जो बदल सकता है। अभी हम जब स्कूल में थे तो एक सब्जेक्ट था हमारा इतिहास, हिस्ट्री। तो जिस किताब में हम पढ़े, गुरुजी हमें पढ़ाए उस समय, कि भारतवर्ष में जब मुगल सम्राट औरंगजेब था, तब उन्होंने बोला कि जो भी चोटी रखेगा उसको जिजिया कर एक टैक्स निकाला था, जिजिया कर, वो टैक्स उसको भरना पड़ेगा। और उन्होंने जो प्रजा थी उनको ऐसा तंग किया और बोला कि आप लोग हमारा इस्लाम धर्म का दीक्षा लो, अगर तुमको जीना है तो हमारा बात मानो, नहीं तो तलवार से काट देंगे, चेक आउट पोजीशन। आप देखो बारिश ने भिगा दिया, किसके पास जा सकते हैं, नहीं जा सकते। चोरों ने लूट लिया, किसके पास जा सकते हैं अपन, चोर लूट के भाग जाएंगे, है कि नहीं। और राजा ने दंड दिया तो किसके पास जा नहीं सकते। उन्होंने बोला, लोग बोले भाई जान बचे लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अगर हमारी जान बसती है तो ठीक है, तो मान्य करेंगे, उनका क्या कहना है। उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है, चोटी काट दो और फड़ी बढ़ा दो लंबा। बोले इतना ही करना है। बोले ठीक है बस। तो बहुत लोग अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम या मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। भारतवर्ष में जो मुस्लिम है वो ओरिजिनली सारे हिंदू है पहले से। किसको जबरदस्ती लोग क्या कर दिया, पहले ऐसा रिवाज था कोई मुस्लिम व्यक्ति उनका झूठा पानी किसी ब्राह्मण के ऊपर फेंक देगा तो वो ब्राह्मण बांट जाएगा और वो मुस्लिम हो जाएगा। ऐसे उल्टा सीधा सब रिवाज था। तो फिर लोग बोले मुस्लिम हो जाएंगे ठीक है, आगे चल के कोई राजा होगा हम वापस हिंदू हो जाएंगे, है ना। बाद में छत्रपति शिवाजी आए, शिवाजी महाराज, या भूमंडलाचा ठाई धर्म रक्षेस नाही, भागवत धर्म राहिला काही तुम्हा कारणे। ये सारे धरती पर धर्म रक्षा करने वाला कोई नहीं था। उस समय छत्रपति शिवाजी राज आए, उनके कारण से हम जो भागवत धर्म वाले हैं, वैष्णव पंथ है, वो बच गए। नहीं तो सबको क्या करते थे, मुस्लिम बना देते थे। शिवाजी राजे जब थे तो उन कुतुबशाही, आदिलशाही, निजामशाही सब उनके अंडर में आ गई। फिर मुगल का जो बादशाह है औरंगजेब वो जागा हुआ। नहीं, इसके पहले जो अफजल खान है, आदिलशाह का जो सरदार था अफजल खान, उन्होंने बोला कौन शिवाजी को पकड़ के ला सकता है, बोलो, चैलेंज किया। तो एक अफजल खान नाम का व्यक्ति था, बड़ा ऊंचा धिप्पाड़ा व्यक्ति था वो। वो बोला मैं शिवाजी को लेके आता हूँ, शिवाजी क्या है पहाड़ का चौहा है, मैं उसको लेके आता हूँ। तब जो आया शिवाजी को पकड़ के ले जाने के लिए, शिवाजी किले से नीचे आया ही नहीं, अपने किले में बैठे रहे। उन्होंने दूत भेजा कि आपसे हम संधि करते हैं दोस्ती, और मिलने आओ। तो शिवाजी राजे ये बात को जानते थे कि अफजल खान जो है धोखेबाज व्यक्ति है। कैसा है धोखेबाज, कई प्रकार के हाँ शास्त्र में वर्णित है। साम दाम भेद दंड, साम प्रेम से समझाना, दाम लालच दिखाना, भेद आपस में फूट गिराना, दंड पनिशमेंट देना, चमचेगिरी इधर का उधर, उधर का इधर, दादागिरी धमकी देना, और चमचे के दादागिरी पोस्ट अधिकार का वापर करना, और कानून से फाइट करना, फाइट विद द लॉ, और इसके बाद में रोना धोना कि भाई जीवो और जीने दो, इससे काम नहीं चले। छल कपट धोखाधड़ी प्रयोगम, छल कपट धोखाधड़ी प्रयोगम, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्रिचिंग इज द एसेंस, एंड प्योरिटी इज द फोर्स। गीता भागवतम पहिया आधार है। हर वस्तु का भगवान की सेवा में प्रयोग करना सिद्धांत है, और शुद्धता हमारी शक्ति है, और प्रचार करना सार सर्वस्व है। जब अफजल खान मिलने आया तब उन्होंने किले के नीचे ऐसे सवान जगह पे वो अपना डेरा डाला था। शिवाजी मिलने आए, जब शिवाजी मिलने आए तो उन्होंने उनको ऐसे आलिंगन किया, ऐसा दोस्ती दिखाई, लेकिन वो बगुले की दोस्ती थी, सही दोस्ती था नहीं। उन्होंने शिवाजी का जो जो मान है ना अपने काख में दबा दी, और पीछे से तलवार का वार किया। और इसके पहले ने कई हिंदू राजाओं को धोखे धड़े से मार दिया था, सोचा शिवाजी को भी ऐसे ही कर देंगे। तो शिवाजी जाने के पहले रात में लोहे का चिलखत पहना था, हाथ में सिंहों का नाखून लगाया, बिछवा लिया साथ में, तलवार लिया, जीरो टोप लिया, बड़े तैयारी के साथ गए, उठ के सीधा गए नहीं मिलने के लिए। वो समझते थे ये बदमाश व्यक्ति है, पता नहीं धोखा भी कर पाए। जैसे तलवार का वार पीठ पे किया तो ऊपर का अंगर का फट गया, फटाक से कपड़ा फट गया। लेकिन तलवार लगी नहीं उनको। फिर उन्होंने एक झटका दिया, उनके हाथ में एक बिछवा था, ऐसा चाकू था ऐसा, उन्होंने उसके पेट में घुसार दिया, उसके आताड़ी बाहर निकली सारी, जैसे तरबूज चीरते है ना ऐसा चीर दिया पूरा, और फिर नाखून से ऐसे पेट फाड़ दिया। ऐसे नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का पेट फाड़े थे। वो बोला धोखा धोखा, बोला धोखा कौन किया है, अरे तुम मिलने आया है, अगर तुम्हारे में धैर्य होता द्वंद्व युद्ध के लिए मुझे तुम बुलाता कि मेरे साथ युद्ध करो फाइट करो, मैं आपके साथ फाइट करता नहीं तो हार मान लेता, मिलने के लिए बुलाया और तुम हमारे ऊपर हथियार चलाता है तो तुम्हारे काम आरती उतार के पूजा करेगा। फिर दूसरा बार किया, उसका धड़ सर से अलग कर दिया, चेकआउट पोजिशन। अब जब हम जब मरा तो सबको पता चल गया शिवाजी राजा है कोई। फिर औरंगजेब को जाग आ गई, बादशाह दिल्ली का, उन्होंने अपने मामा को भेजा, 1.25 लाख सेना लेकर आया, कितना 1,25,000। शिवाजी की सेना मुट्ठी भर थी, कितने थे मुट्ठी भर। अगर वो चारों तरफ से किला को घेर लेता और खाली पड़ाव डालता तो 1 साल के बाद अंदर का दाना पानी खत्म होता है किले का, शिवाजी को शरण आना पड़ता था। इसका बुद्धि चली नहीं, उसने बहुत अत्याचार अन्याय किया और पुणे में लाल किले में जाकर बैठा। 5 महीने बाद 6 महीने बाद 1 साल हुआ, वहां से जाने को तैयार नहीं। शिवाजी राजे बोले इसका दवा पानी करनी पड़ेगी, क्या करने पड़ेगी दवा पानी। शिवाजी ऐसे थे कभी कभी वो दाढ़ी लगा देते थे और ये नहीं समझ में आता शिवाजी है या मुस्लिम आदमी है कोई, फड़ी एक बार लगा दिया, मेकअप किया। हुआ क्या, जब ये शिवाजी गए एक शादी हुई, शादी के बारात में गए, बराती बनकर वो घुस गए किले के अंदर, उनका जो राजवाड़ा था ना लाल महल, उसका चोर रास्ता इनको पता था कैसे घुसना है कैसे निकलना है। घुस गए अंदर रात में 12 बजे, प्रथम प्रहर सब जागे, द्वितीय प्रहर जागे भोगी, तृतीय प्रहर जागे तस्कर, चतुर्थ प्रहर जागे योगी। पहले प्रहर में 6 से 9 बजे तक सामान्य लोग जागते हैं और जो नवविवाहित पति पत्नी है बालक की इच्छा रखते हैं वो 9 से 12 तक वो जागते हैं। इसके बाद जब पहले प्रहर वाले सो जाते हैं आराम से, दूसरे वाले सो जाते हैं, और प्रथम प्रहर सब जागे, द्वितीय प्रहर जागे भोगे, तृतीय प्रहर जागे तस्कर, 12 से 3 बजे तक चोर गुंडा लोग जागते हैं। तो शिवाजी राजे 12 बजे के बाद उसके घर में महल में घुस गए अंदर से, जैसे तलवार का वार किया, उनको लगा शाहिस्ते खान मरा, लेकिन वो उसका बेटा था। उसके बाद दूसरा वार करने वाले हैं, शाहिस्ते खान चेकआउट पोजीशन, तो उसकी पत्नी बेगम लोग आई, उनके सामने अपना अचल फैलाई, बोले आप राजा हैं, हम आपके साथ अनाथ भीख मांगते हैं, याचना करते हैं, पति का दान दो। बोले 1.25 लाख सेना तो इसको बचा नहीं सकती है, लेकिन अब ये स्त्रियों को मैं हथियार नहीं चलाऊंगा। उन्होंने बोला रखो उंगली तुम्हारा सामने, तलवार का वार किया और चारों उंगली कट गई। बोले भागो जल्दी, जान लेके यहां से भागो। तो शाहिस्ते खान 1.25 लाख सेना होते हुए क्या कर दिया, भागा उधर से जान लेकर। तब औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी उसने एक बार और कोशिश किया, फिर भेजा मिर्जा राजे जयसिंह। जब मिर्जा राजे राजपूत थे और शिवाजी का सब किला फटाफट लेने लगे, फाइट में शिवाजी हारते गए सब जगह। फिर शिवाजी महाराज बोले फाइट से फायदा होगा नहीं, दोस्ती ही बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि फाइट काहे करते हो, तुम राजपूत हो हम हिंदू है, आप हिंदू है, आपस में सलाह करो, आप क्यों दुष्टों की मदद करते हो। बहुत समझाया नहीं समझा, फिर बाद में बोला बिना फाइट का ही किला दे देता हूं, सब खाली चार पास रखो हमारा। सलाह हो गई, मिर्जा राजे बोले आपको आना पड़ेगा, कहा औरंगजेब को मिलने के लिए। बोले ठीक है, संभाजी को साथ लेकर औरंगजेब को मिलने के लिए गए। औरंगजेब जब दरबार भराया तो शिवाजी को सामने खड़ा किया जहां उनके सरदार लोग खड़े रहते, तो शिवाजी को बहुत गुस्सा आया, बोला मैं राजा हूं और मैं परास्त नहीं हुआ हूं, मैं प्रेम से आपको मिलने आया है, आप हमारा सत्कार करना चाहिए राजा जैसा। बहुत गुस्सा हुए, तब औरंगजेब ने शिवाजी को जेल में बंद किया, क्या कर दिया, 5,000 सेना हाथ में तलवार लेकर चारों तरफ से पोजीशन दिया, जेल में बंद। शिवाजी बोले अभी हम कृष्ण के जन्मस्थान पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? कृष्ण के जन्मस्थान। सारा संसार प्रभु का है, ब्रह्मांड के मालिक है, प्रभु के लीला चित्र विचित्र है। आए तो कहां आए, जेल खाने में आए। फिर उन्होंने नाटक किया कि मैं बीमार पड़ गया, 6 महीना तक बोला क्या करना पड़ेगा, मिठाई के पेटारे फल फ्रूट साधु जनों को देना पड़ेगा, देते रहे 6 महीना चेकअप हुआ। बाद में सिक्योरिटी कंटल गए, बोले इसमें कुछ है नहीं, ऐसा पेटा रह जाता है। एक पेटारे में बैठ के शिवाजी चेकआउट हो गए, चले आए महाराष्ट्र। माँ के सामने जब आए शिवाजी सन्यासी वेश में थे, जब प्रणाम किया जीजा माता उनको पहचान नहीं पाई। जब उन्होंने प्रणाम किया तो वो बोले क्या चाहिए पूछो ना, आपको धन द्रव्य क्या चाहिए, अभी मेरा तो तकदीर फट गई, बेटा आने वाला है नहीं, हताश है। तो शिवाजी राजे बोले कोई कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ है, आपको थोड़े समय शिवाजी मिल जाएगा। तब माँ उनको पहचान नहीं सकी, तो बाकी लोग क्या पहचान पाएंगे। ऐसे थे शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपने भागवत धर्म की रक्षा की, धर्म कार्य के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, प्रभु की कृपा से उनका कोई अहित हुआ नहीं। जाके राखे साया मार सके ना कोई, बाल भी बाका न कर सके जब जगत वैरी होए। जब कृष्ण भगवान किसकी रक्षा करते हैं तो कोई मार नहीं सकता है। बंगाली में भी कहावत है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जब प्रभु किसको मारना चाहता है उसको कोई बचा नहीं सकते है, और प्रभु जिसको बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता है। यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें प्रभु के शरणापन्न होना है, प्रभु से कृपा की याचना करना है कि हमारी रक्षा करें और हम प्रभु की सेवा करेंगे, तब क्या होगा, हमारा कल्याण होगा, है ना। तो जो मुस्लिम भी है वो भी वास्तव में नहीं है, जबरदस्ती बन गए। जो क्रिश्चियन है वो भी जबरदस्ती बन गए हैं, और बौद्ध है वो भी जबरदस्ती बने हैं। तो ये वास्तव में जो हमारा ओरिजिनल पहचान क्या है, हम लोग भागवत धर्म के अनुयायी है। हमारी पहचान है चतुर्वर्णम आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम है, ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी, और 4 प्रकार के वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण विद्या देते हैं, क्षत्रिय समाज की रक्षा करते हैं, वैश्य खेती व्यापार गोपालन करके समाज की सेवा करते हैं, शूद्र नौकरी करके समाज की सेवा करते हैं। तो सभी लोग सेवा में लगे हुए है, कोई भी सेवा के बिना नहीं रह सकता है, और हमारी सेवा पूर्ण तभी होगी जब हम प्रभु की सेवा करेंगे, तब हमारा जीवन क्या होगा, सफल होगा। 84 लक्ष्य होने के बाद ये जीवन मिला है, हमें इसका क्या करना है, सदुपयोग करना है। आप लोग परामर्श जब समय हो आते रहिए, आरती अटेंड करिए, प्रवचन अटेंड करिए, और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। सब बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अगर बोलने में कोई चुक बोल हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरि ओम तत्सतः।